चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षु विश्वम्भरो द्विजवरो जगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिवच्छ विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुति तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। আমরা বহু ভাগ্যবান, একথা আমাদের মনুষ্য জন্ম লাভের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় যখন সর্বাধিক সেবা আমরা করতে সক্ষম হব। মনুষ্য জন্ম ব্যতীত এই প্রকার সেবা লাভের সুযোগ মনুষ্যতার জন্মেতে হয় না। সুতরাং এইরূপ সুযোগপূর্ণ জন্ম কারও কখনো অবহেলা করে নষ্ট করা উচিত নয়, এই কথা শাস্ত্রেতে সর্বত্র কীর্তিত হয়েছে। যেসব বস্তুতে সাধারণ মনুষ্য আবিষ্ট হয়ে রয়েছে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়, যদিও সকলে সেটা বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না, তথাপি এটি সত্য কথা। সেগুলিকে শাস্ত্রে নিত্য ক্লেশপূর্ণ বস্তুগুলি বলেছেন, তার দ্বারা পরাশান্তি লাভ হয় না, এটাই শাস্ত্রের একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা। নিত্যার্থীদের না বৃত্তে না দুর্লভে না আত্মমৃত্যু না দুহাপ্রাপ্ত পশুভি কা প্রীতি সাজিতই চলই। পরমার্থ জগতে এই প্রথম শিক্ষা বলি আমার মনে হয়। এই শিক্ষাটাই যদি আমরা ভালোরূপে অধিগত করতে না পারি তাহলে আমাদের কমোন্নতি সম্ভবপর হয় না। আমরা কিন্তু এই শিক্ষাটাকে অগ্রাহ্য করেই চলেছি। আমরা মনে করি সর্বোত্তম বস্তুতে আসক্ত হলেই আমাদের এই সমস্ত নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্তি বিদূরিত হবে। কথা ঠিক, কিন্তু সেই বস্তুতে আসক্ত হওয়া কেমন করে সম্ভব? সেই বস্তুর সংস্পর্শ লাভ করতে কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে? আসক্ত হলে আমাদের নিকৃষ্টের প্রতি আসক্তি বিদূরিত হবে ঠিকই বটে। এই জন্য যোগ্যতার বিচার অনুসারে আমাদের সাধন পথে চলার ব্যবস্থা শাস্ত্রে রয়েছে। তাবৎ কর্মাণি কুর্বিত ন নির্বিদ্যে তো যাবতা মত কথা সুবর্ণ দৌবা শ্রদ্ধা যাবন্ন বিদ্যতি। এই প্রকার বাক্যের দ্বারা আমরা কর্মমার্গে বিচরণ করার উপদেশ পেয়েছি, কিন্তু উদ্দেশ্য কি? কর্ম মোক্ষায় কর্মণি।
আর যারা পরে এসেছেন একটু পিছে বসুন।
কর্ম মোক্ষায় কর্মণি বিদাত্তে জগতং যথা। কর্মের উপদেশ সেটা প্রকৃত কর্ম করাই আমাদের প্রয়োজন নয়, কর্ম থেকে মুক্তি লাভ করার জন্যই আমাদের কর্মের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। তার জন্যই বলা হচ্ছে নির্বেদ একান্ত আবশ্যক, নতুবা আমাদের মঙ্গলের পথে আমরা অগ্রসর হতে পারছি না। আমরা সমস্ত লীলা কথা শ্রবণ করছি, লীলাস্থলী দর্শন করছি, বৈষ্ণবদের আনুগত্যে সর্বদাই আমরা আমাদের সময়কে নিযুক্ত করতে চেষ্টা করছি, তথাপি আমাদের নির্বেদ সম্পূর্ণরূপে লাভ না হওয়ার কারণে আমরা কর্মের প্রতি আসক্ত রয়েছি। স্ত্রী পুত্র গৃহ ইত্যাদিতেই আমাদের চিত্ত আবদ্ধ রয়েছে। তজ্জন্য আমার পরম উন্নত উজ্জ্বল রসের যে সমস্ত লীলাবিলাস তার মধ্যে অধিকার লাভ করতে পারছি না। জানি না খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তি তারা ভাগ্যবান, তারা এর মধ্যে প্রবেশ করে তাদের পরমমঙ্গল লাভ করছেন, কিন্তু অধিকাংশই আমার মনে হয় আমরা তার নিকটেও যেতে পারছি না। তার জন্য আমাদের এই সমস্ত কথা যদিও তার ফল আছে, কিন্তু সেইটুকু ফল আমাদের কাছে যথেষ্ট নয়। সেই রূপভাবের বস্তুতে আমরা আসক্ত হতে পারছি না। আমাদের কর্ম প্রবৃত্তি জ্ঞান প্রবৃত্তিও কজনের আছে তাও আমরা বুঝতে পারি না। সেই প্রবৃত্তিতে লাভ করবার যোগ্যতা বর্ণন করতে গিয়ে রূপ গোস্বামী প্রভু বলেছেন, অন্যাভিলাষিতা সন্ন্যং জ্ঞান কর্মাদ্যনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তির উত্তমা। এই প্রকার উত্তমা ভক্তি এত দুর্লভ, কর্ম জ্ঞান যোগ ইত্যাদি থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই উত্তমা ভক্তিতে অধিকার আসছে না। সুতরাং ক্রমশ আমরা সেই উন্নত অবস্থা লাভ করবার জন্য চেষ্টা করলেও আমাদের কর্মজ্ঞান প্রবৃত্তি সেগুলি আমাদেরকে বাধা প্রদান করছে। সেই বাধাকে আমাদের দূর করাও সঙ্গে সঙ্গে একান্ত আবশ্যক। সেদিকে নিঃশেষ্ট বা কেবলমাত্র পরম উন্নত উজ্জ্বল রসের লীলাবিলাসী আমাদের কাছে সেই রকমভাবে প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে সক্ষম হচ্ছে বলে আমি মনে করি না। বাঞ্ছা কল্পত রূপভ্য কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনে ভূ বৈষ্ণবে
ঞ্জনশ্লাঘয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো মহাপদন্নায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্রিশে নমঃ। গুরবে গৌরচন্দ্রায় राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुडरोच संविदधतं पण्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायें दामोदरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणन्ति।
शिष्य गुरुदेवेर अहेतुक कृपा एवं शिष्य राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहनेर कृपाय आमरा वृंदावन थेके परिक्रमा आरम्भ करे संकल्प ग्रहण करे क्रमशः वृंदावने दर्शनीय स्थान मथुरा मधुबन तालवन कुमुदवन बहुलावन तत्पश्चात गोवर्धन गिरिराज श्यामकुंड राधाकुंड यह परिक्रमा करे तत्पश्चात दी कामे बने हमारा गतकल्य गिएछिलाम एई समस्त स्थानगुली हमारा दर्शन करेछि। आज के हमारा श्री बरसाना ग्रामे ते उपस्थित हुएछि पूज्यपाद श्री बिक्रम महाराज तत्वर कथा बोलें ओ सबगुली आमादेर के ग्रहण करे एर मध्ये प्रवेश करवार चेष्टा करते हबे अन्यथ निवृत्तिरो चेष्टा थाका उचित एवं संगे संगे राधा कृष्णेर एकांतिक महाप्रभुर अनुगत्य ते रूप गोस्वामी अनुगत्य ते ए भजन मध्ये आमरा प्रवेश लाभ करते गीताते इनी जा बोलेछेन गीताते ताई बोलेछे परम दृष्ट्वा ना ना विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपास्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बोले विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषयगुली के प्रत्याग कर दिए आ निराहार थेके इंद्रियगण के विशेष के निवृत्ति कोटि कोटि जन्मे होबे ना कखन होबे ओई परवस्तुते जखन अनुराग कोनो रकम होबे विषय मध्य सब समय जीव निविष्ट आछे जतो परिमाणे ते भगवत सेवार कृष्ण भजनेर लालसा कृष्ण सेवार लालसा हृदय ते उदित होबे एवं साधु संगते ये क्रमशः उन्नत होवे तो परिमाणे ते विषया विनिवर्तन सहज एटी उपाय जत परिमाणे ते आमरा साधु संग करब जत परिमाणे ते आमरा नाम संकीर्तन इत्यादि करब भजन करब तत परिमाणे ते ये विषयगुली जेते बाध्य एर मध्य जरा निष्कपट हुए ये साधु संग ना करे गुरु सेवा ना करे हरि कथा ना श्रवण करे তাহলে সত্যি সত্যি তাহাদের হবে না। এই জন্য বিষয় দূর করবার আসক্তি দূর করবারও কৃষ্ণ ভজন সাধু সঙ্গ ইত্যাদি বলেছেন শতাং প্রসঙ্গাম বলেছেন। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি কালকে আজকে আমাদের পাশ্চাত্য দেশেতে যিনি সর্বত্র ভগবান নাম কীর্তন প্রচার করেছেন
বহু লোকে এই দিকে নিয়ে এসেছেন, আকৃষ্ট করেছেন। টুডে দি ডিসাইপল অফ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর হু ওয়েন্ট টু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ অ্যান্ড ইন ভেরি সুন ইন নো টাইম হি প্রিচড ওভার অল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড অল ওয়ার অ্যাট্রাক্টেড অ্যান্ড হি এস্টাবলিশড সো মেনি মোর দেন হাউ মেনি সেন্টার্স and he wrote so many books like translation of Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamritam and so many Krishna books, so many things. And very easily he charmed all Western devotees who were totally engaged in material things, attachments. So today is his disappearance day. We will give Pushpanjali in his lotus feet and we will try to glorify how he quickly done this. It is a very wonderful thing. In morning also from 9 to 12 and also in evening we will try to do. Hum log abhi कल हम लोग बरसाने में गए कामेवन में। कामेवन का नाम कामेवन आप नोट कर लेंगे, पुंडरीक है सर। कभी बंगला बोलेंगे देख सुन करके दोनों आप लिखेंगे, जिसको कहेंगे वही बोलेगा। ठीक, अब यही रहता तुम्हारे पास में टेक्स्ट बोलता ना, अब इसको लेना पड़ेगा। काम्यवन, कामने जितनी प्रकार की कामनाएं लौकिक पारलौकिक हो सकती है। संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं, संसार के अनेक रकम लोग, बहुत रकम कामना, कारो भोग, कारो मोक्ष, कारो वैकुंठ गति, कारो द्वारका गति, रामचंद्र गति, যত রকমের কামনা আছে সব রকমের কামনা পূর্ণ করেন যে বন তার নাম হচ্ছে কাম্যবন। কাম্য মানে অত্যন্ত রুচি, অত্যন্ত মনোহর, অত্যন্ত সুন্দর। বনদের মধ্যে কাম্যবন অত্যন্ত সুন্দর, রুচিকর, মনোহর। কৃষ্ণের মনকে হরণ করে, শ্রীমতী রাধিকার মনকে, গোপ গোপী মনকে হরণ করে, এই জন্য তাহার নাম কাম্যবন। অপ্রাকৃত কামনার বিলাস ক্ষেত্র, এইসব বলি এখানেতে হতে পারে, এই জন্য তাহার নাম হয়েছে কাম্যবন। এখানেতে ইহা পর 84 তীর্থ, 84 কুণ্ড, 84 খম্ভ আর অসংখ্য তীর্থ এখানে তীব্র রয়েছে। 7 কোষে পরিক্রমা এখানকার, যেরকম হয় গোবর্ধনের 7 কোষে পরিক্রমা, এখানেও 7 কোষে পরিক্রমা। তার মধ্যে কামেশ্বর মহাদেব কালকে আপনারা গিয়েছেন, তিনি যেরকম হতে বৃন্দাবনে তো গোপীশ্বর মহাদেব, এখানে তে কামেশ্বর মহাদেব। ইনি লৌকিক পারলৌকিক পারমার্থিক অপ্রাকৃত সব কামনাগুলিকে পূর্ণ করেন, এই জন্য তাহার নাম হচ্ছে কামেশ্বর, কামেশ্বর মহাদেব। এখানে তে চরণ পাহাড়িতে আপনারা গিয়েছিলেন, চরণ পাহাড়ি কৃষ্ণ সেখানে বেণুবাদন করেছিলেন আর সমস্ত গাভীগণকে আহ্বান করেছিলেন, সব গাভীরা ওখানে একত্রিত। তাছাড়া ওই বেণুবাদন করাতে ওই পাহাড়টাই গলে যায় আর যেখানে সেখানে গাপি গণের, বৎসগণের, সখাগণের পদচিহ্ন সেখানে অঙ্কিত রয়েছে। কৃষ্ণের দু পায়েই ওখানেতে অঙ্কিত রয়েছে। এটাকে বলে বড় চরণ পাহাড়ি, বড়া চরণ পাহাড়ি। আর কোশি কে পাশ মে ছোটি বৈঠন, বৈঠন কে পাশ মে যে পাহাড়ি হ্যায় উসকো কহতে হ্যায় ছোটি পাহাড়ি। কিন্তু ওহাঁ পর বড়ে বড়ে পাহাড় আর সবকো স্পষ্ট রূপ মে দিখতা হ্যায়। আর এক চরণ পাহাড়ি আর হ্যায় নন্দগাঁও মে, ওহি বহুত প্রসিদ্ধ চরণ পাহাড়ি হ্যায়, যাহাঁ পর অক্রূর উনকে চরণ মে লোট পোট হো গয়ে আর ভক্তি কি ভি কৃষ্ণ কে চরণো সে মাঙ্গা থা, जो भागवत में बहुत सुंदर रूप से दिया गया था। उन चरणों को देख करके उद्धव जी भाव विभोर और विह्वल हो गए। पासी में लुकलुकी कुंड है। लुकलुकी कुंड माने क्या? एक तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ में उस सरोवर में स्नान करते थे, और वहां पर लुकलुकी जल में कृष्ण डूब जाते, सखा लोग उनको खोजते थे इधर से उधर, और कृष्ण डूब करके कभी उधर कभी उधर निकलते थे। और कभी कभी सखियां भी उसी पर उसी कुंड में आती थीं, और एक छोर पर सखियां स्नान करती, दूसरे छोर पर ये, और कृष्ण डूब करके मगर का रूप धारण करते जैसे, और उस पार में श्रीमती राधिका जी के चरण को स्पर्श करते, और राधिका जी कहती कौन हमारा चरण छू लिया, इस प्रकार से क्रीड़ा विलास करते थे। उसको आंख मुदौनी लुकलुकी कुंड लुका लुकी, लुका चोरी, लुका चोरी माने किया आंख बंद कर दिया किसी का, और सब लोग छिप गए, और जिसका आंख बंद किया है वो जाकर के खोजेगा। सब सखियां मिलकर के कृष्ण के आंख को बंद कर देती थी और छिप जाती थी विभिन्न कुंजों में, और कृष्ण उनको खोजने के लिए जाते थे। कभी राधा जी के आंख बंद कर दी जाती, वो खोजती थी। इस प्रकार से ये क्रीड़ाएं सब होती थी उस लुकलुकी कुंड में। और भी वहां का लीलाओं का वर्णन है, इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती जी लुकलुकी कुंड के पास में ही नीचे स्थल वो है, उसी के पास में रह करके बहुत दिनों तक, सुनते हैं कि 14 वर्ष ना कि कितना वर्ष यहां पर रहे, एकदम निर्जन स्थान में, वहां पर कोई नहीं, वहां पर भूत पिशाच भी नहीं जाएगा, आदमी डकैत भी नहीं जाएंगे, और उस स्थान पर बिहड़ वन में नीचे और वहां रह करके, कभी आते काम्य वन में कुछ भिक्षा कर लेते, नहीं तो कभी आते ही नहीं, भक्त लोग उनको जाकर के वहीं पर कुछ दे देते तो खा लेते, और कभी वो भी नहीं, दिन रात भजन करते थे वो प्रबोधानंद सरस्वती। इसके बाद में तो फिर वो वृंदावन में गए, जहां पर उनका समाधि और भजन स्थली है यमुना के किनारे। इसलिए प्रबोधानंद जी का यहाँ पर स्थान बहुत प्रसिद्ध है, लुकलुकी कुंड के पास में ही। यहाँ पर पांचों पांडवों का स्थान कामेश्वर मंदिर के पास ही में है, कामेश्वर जी का स्थान पांचों पांडवों का। पांचों पांडव यहीं पर रहते थे। कब रहते थे? पांचों पांडवों और दुर्योधन में पासा खेला हुआ द्युत क्रीड़ा, ताते छल बल करे दुर्योधन ताके जीते लिलो, और राज्य जीते लिलो, द्रौपदी पर्यंत के जीते लिलो। तखन शेष पर्यंत पांच पांडव 12 বর্ষের জন্য বনবাস, আর 1 বর্ষের জন্য গুপ্ত বনবাস হয়েছিল। তখন তারা এই কাম্য বনেতে তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন। এইখানে হিডম্বক রাক্ষসকে মেরেছিলেন ভীমসেন, আর বহু সমস্ত কথা আছে। এইখানে ধর্মের সঙ্গে বকের সঙ্গে আর যুদ্ধ হয়েছে, কালকে কথা ওখানে বলা হয়েছিল, আপ লোগো নে শুনা হোগা, ইয়ে সব ওই পর হুয়া থা। মহারাজ যুধিষ্ঠির কি সত্যবাদিতা সে উস যক্ষ নে আর বাকি পাঁচো চারো পাণ্ডবো কা ভি জীবন দান দিয়া, আর ওহা কা আর ইহি পর বিমল কুণ্ড হ্যা। বিমল কুণ্ড পর বহু সি লীলায় হ্যাঁ কৃষ্ণ কি, বিমল বিমল নির্মল অপ্রাকৃত লীলায় হুই, ইসলিয়ে উসকা নাম বিমল কুণ্ড। এক বিমল রাজা থে দ্বারকা কি তরফ মে, উনকি 16,000 কন্যায় থি। নারদ জি সে পতা লগা, হম উনহোনে পুছা যে হম আপনি লড়কিয়ো কি শাদি করনা চাহতে হ্যাঁ, আব যুবাবস্থা মে প্রাপ্ত হো গই হ্যাঁ, আপ কোই উচিত বর বতলাইয়ে। উনহোনে উচিত বর এক হ্যায়, ও কৌন হ্যায়, কৃষ্ণ হ্যায়। তো ইয়ে কৃষ্ণ সে কেসে শাদি হোগি, তো ভীষ্ম পিতামহ কে পাশ মে গে, জানতে থে ইয়ে ভক্ত হ্যায়, উনসে নিবেদন কিয়া। ফির উনকে কহনে সে উনহোনে আকর কে বিমল কুণ্ড মে তপস্যা কি, কৃষ্ণ কো প্রসন্ন কিয়া। আর 16,000 কন্যাও কে সাথ মে, জিসকি সবসে বড়ি জো কন্যা থি উসকা নাম বিমলা দেবী, সব লোগো কে সাথ মে গান্ধর্ব বিবাহ উনহোনে কিয়া। কে কি 16,000 যে কন্যা থি পিছে সে ও দ্বারকা মে মহিষী বনি থি, যো কি নরকাসুর কে ইহা পর নহীঁ, ইসি কল্প মে। জেসে কি শ্রীমতী রাধিকা জি সত্যভামা হুই, চন্দ্রাবলি জি হুই হ্যাঁ, কাহ জন্ম লে করকে কেসে ফেঁক দিয়া, আর কেসে ইয়ে সব উসমে ললিত মাধব মে ইয়ে সব বর্ণন কিয়া হ্যায়, যে কেসে ইয়ে সব হুয়া। বিশেষ রূপ সে জাননে সে ও গ্রন্থ দেখনা পড়েগা, আপ লোগো কো শুননা পড়েগা। রাধা জি আর চন্দ্রাবলি কৌন থি, চন্দ্রাবলি থি রুক্মিণী, আর সত্য রাধিকা জি সত্যভামা থি, আর ইনকি যে আট যে গোপিয়া থি প্রধানা, ইয়ে আঠো ইহা পর অষ্ট মহিষিয়া থি, ইয়ে রূপ গোস্বামী নে দিখলায়া হ্যায়। উসি তরহ সে ইয়ে 16,000 ভি ইনকি কন্যায় ওহাঁ পর যা করকে কহাঁ কহাঁ কিসি কিসি রাজা কে সাথ মে চলি গই থি, রাজাও নে উনকো পালন পোষণ কিয়া, উনকি শাদি কর দি থি, কোই রাজকুমারী থি, নরকাসুর উনকো ওহাঁ পর লে করকে বন্ধ কিয়া। ওহাঁ দ্বারকা লীলা মে কৃষ্ণ উনকে সাথ মে পিছে সে বিবাহ কিয়া, ইসলিয়ে ইসকা নাম বিমল কুণ্ড হ্যায়। ইস বিমল কুণ্ড পর হি পাঁচো পাণ্ডব লোগ রহতে থে, উসকে পাশ হি মে পঞ্চ সরোবর হ্যায়, ইহীঁ পর জয়দ্রথ নে দ্রৌপদী কা হরণ কিয়া থা। জয়দ্রথ যা রহা থা কহীঁ, আর পাঁচো পাণ্ডব ভিক্ষা কে লিয়ে কহীঁ গয়ে থে, ও অকেলি থি, আর ইতনে মে জয়দ্রথ নে উনকো জোর সে পকড় করকে উনকো রথ মে বিঠায়া। উনহোনে সোচা যে হামারা ইয়ে এক তরহ সে দেবর জেসা লগতা হ্যায়, হামারি বহন কা ননদোই হ্যায়। ননদ কৌন থি, দুর্যোধন কি বহন, দুষ্কলা, দুষ্কলা, আর উসকি শাদি জয়দ্রথ সে হুই থি, ইসলিয়ে উসকে ননদোই ইয়ে লগতে থে। এ সোচা যে হামসে মজাক উজাক কর রহা হ্যায়, কিন্তু মজাক নহীঁ, সচমুচ মে ইনকো জবরদস্তি রথ মে বৈঠা দিয়া আর লে করকে চল পড়া। দ্রৌপদী জি রোনে লগি আর জোর সে চিল্লাই, কিসি প্রকার সে পাণ্ডবো কে কানো মে ইয়ে সব পড়ি। ভীম আর অর্জুন আশ্রমে আয়, দেখা যে দ্রৌপদী নেই, ওই রো রহি পাঞ্চালী, বস ও লোক রোনে কি আওয়াজ কে তরফ মে পিছা কিয়া, দেখা যে জয়দ্রথ উনকো পকড় করকে লে যা রহা হ্যায়। উস সময় মে ভীম জি নে রথ চল নহীঁ রহা হ্যায় উতনা তেজ, কোন পুত্র হ্যায় তো দেখা যে ইয়ে রথ অধিক নহীঁ চল রহা, বস কুদ করকে আর দৌড়ে বড়ে জোর সে, রথ কি অপেক্ষা অধিক বেগ সে চলতে থে কোন পুত্র হোনে কে নাতে। আর অর্জুন নে কিয়া, অগ্নি বাণ এসা মারা যে উসকে ঘোড়ে
कि चारों तरफ में एकदम आग जलने लगी, घोड़े ठहर गए। इतने में भीम ने उसको पीछे से जाकर के पकड़ लिया। फिर भीम और अर्जुन मिल करके अर्जुन के रथ में खंभे से बांध करके उसको द्रौपदी के सामने लाए। द्रौपदी अब तक रो रही थी और जब देखी जैसे इसको पकड़ करके ले आए हैं, तो अर्जुन और भीम दोनों बड़े बिगड़े हुए थे। भीम ने कहा जा भी इसी को मारो, खत्म कर दो। और अर्जुन भी सोच रहे थे जा भी इसको मारेंगे, किंतु द्रौपदी के चरणों में इसने अपराध किया, इसलिए द्रौपदी के पहले पास में ले जाएं और वो जैसा कहेगी वैसे हमने इसको दंड देंगे। उस समय में कृष्ण वहां थे। द्रौपदी जी ने कहा, उन्होंने पूछा जी इसे अभी मार डालें? तलवार उठाया और बाण उठाया मारने के लिए जो ही, तब द्रौपदी ने कहा जी नहीं नहीं, जैसे ये हमारे कौन हैं लगते हैं ये देखो, यदि इसे मारोगे तो तुम्हारी बहन विधवा होगी, रोएगी, वो कहां लगेगा। यदि तुम्हारी बहन होती तो बहन तो है ही है दूसरा, और इसका ये पति है। जैसे मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं रोऊंगी, तुम लोग रोओगे, उसी तरह से ये विधवा हो जाएगी, मत मारो। तब हाँ कृष्ण ने कहा जब आप क्या करें, द्रौपदी कर दिया मत मारो, और ये लोग कहते हैं जो प्रतिज्ञा करें जो हम जरूर मारेंगे। कृष्ण ने कहा ये बीच बचाव किया, उन्होंने कहा जी एक बात करो, मानी व्यक्तियों को अपमान करने से वो मरने की अपेक्षा अधिक बड़ा हो जाते, अधिक अधिक है वो, इसलिए इसकी दाढ़ी ऐसा कमाओ आधा, मोछ कमा दो पूरा, ना ना पूरा, और दाढ़ी रख दो। ये मुसलमान वैसा ही करते हैं, कैसा करते हैं, मोछ हटा देते हैं दाढ़ी रखते हैं। और हिंदू लोग क्या करते हैं, मोछ रखते हैं दाढ़ी कमाते हैं, इसलिए उनका अनुगमन करने वाले ये मुसलमान लोग हैं जयद्रथ का, इसलिए वो स्त्रियों पर कुदृष्टि इत्यादि डालते हैं, उनके वंशधर ये हैं। और सिर पे 5 चोटियां रख दी, ऐसे कमा करके। मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं ना तो उसके ऊपर से चोटी रखते हैं, देखा है लाल लाल, नहीं देखा, सिर पर नहीं रखेंगे हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। उनकी बस चलती तो सिर से चलते, पैर से नहीं चलते, क्योंकि हिंदू पैर से चलते हैं, उल्टा सब काम। उनका विवाह कब होता है पूछेंगे, अच्छा हिंदुओं का विवाह कब नहीं होता है उस समय करेंगे, उनका सब रीति रिवाज सब उल्टा। हम लोगों का विवाह रात में होता है, उनका होता है दोपहर में, बस वो मुख से हिंदू जैसे खाते हैं इसका उल्टा नहीं कर सकते। और जूता सिर पर नहीं पहनते हैं, वही माने बाध्य होते हैं। तो ये जयद्रथ का भी वैसे ही उन्हीं के वंशधर हैं। अंत में कृष्ण के कहने से उसका ये कमा दिया गया, दाढ़ी भी कुछ ऐसे ही कमाई गई, और इसके बाद में पंच शिखा उसको रख दे करके उसको छोड़ दिया। वो लज्जित होकर कहा जी हम अर्जुन का किसी न किसी दिन जरूर वध करेंगे, इसलिए शंकर की आराधना की और उनसे वर मांगा जी उसको कोई नहीं मार सके। यदि उसके पिताजी कोई मार भी दे और पिताजी उसके सिर को फेंक दे तब मरूंगा, ऐसा नहीं मरूंगा। तो ऐसा ही हुआ, अर्जुन ने बाण मारा, सिर कट गया। और उस सिर को लेकर के जब उस सूर्य को तर्पण शाम को कर रहे थे, सूर्याय नमः सूर्याय नमः, वह सूर्याय नमः सिर भी सूर्याय को दे दिया, तो मर गया। तो इस तरह से ये स्थान, थोड़ा सा बोल लीजिए, कोई बोलेगा तुम बोलो। आ रही थी So sleepness will go away and we will hear again with new interest. विमल कुंड में और भी कुछ घटनाएं हैं, मैं बोलना चाहता हूँ। विमल कुंड से आरोप ऐसी घटना थी, जब पांचों पांडव लोग विमल कुंड के पास में रहते, उस समय दुर्योधन ने
किसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण किया हस्तिनापुर में, और निमंत्रण करके उनको खूब 56 प्रकार का भोग खिलाया, बहुत अच्छे अच्छे चीजें। दुर्वासा ऋषि जी तो आशुतोष हैं, शंकर जी के अवतार हैं, कुछ भी हो और उनको प्रसन्न कर दो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो खाने पीने के बाद में बड़े प्रसन्न हो गए और बोले बरम ब्रूही, बर मांगो। उन्होंने कहा जैसे दुर्योधन ने सोचा जे ऐसा वर मांगे जे पांडवों का विध्वंस हो जाए, किंतु ये तो इनसे नहीं कहेंगे कि उनका विध्वंस कर दो। उन्होंने कहा जे प्रभु एक वर है, हमारे बड़े भैया लोग, हमारे आदरणीय भाई लोग काम्य वन में हैं, जैसे आपने हमारी इच्छा को पूर्ण किया वर मांगने के लिए कहा और हमने आपको आदर किया, आप वहां पर पधारिए और वहां पर उनके पास में जाकर के अपने 60,000 शिष्यों के साथ में पहुंचिए और वो लोग आपका आदर करें और हमको जैसे वर दिया उनको भी वर दे आइए। और 60,000 शिष्य के साथ में जब जाएंगे जो द्रौपदी खा चुकी हो जाएगी और उसका बर्तन मल लिया होगा तब जाएंगे दोपहर के बाद। उन्होंने कहा जी अच्छी बात है सोच करके, और 60,000 ऋषियों के साथ में अपने शिष्यों के साथ में यही विमल कुंड में दोपहर के बाद में जब आए, जब द्रौपदी जी भी खा चुकी थी, सबको खिला चुकी थी और बर्तन को भी मांट करके अंध कर दिया। ये बर्तन कैसा था, ये किसी ऋषि का दिया हुआ ये था, सूर्य का, सूर्य दिन में दिया था द्रौपदी को, इसलिए दिया था कि जब तक तुम भोजन नहीं करेगी लाखों आदमियों को खिला देगी और जब तुम खा करके बर्तन को मांज करके अंधा करके रख देगी तब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए द्रौपदी जी सब लोगों को खिला पिला कर, इधर सुनो इधर, सबको खिला पिला कर और पांचों पांडवों को भी खिलाकर जब देखा कि कोई अब बाकी नहीं है तो अंत में उसने खाया और खा करके उसको मांजा अच्छी तरह से और उल्टा कर दिया। क्या हो गया कुकुर, उसको बार कर दो, मार करके बार कर दो। अरे ब्रह्मचारी आप जन उठे बार कर दो पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज जी के पास में गया और बोले आज मैं आपका अतिथि हूँ, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। युधिष्ठिर महाराज जी बोले आप विमल कुंड में स्नान करके पधारिए, तब तक हम लोग आपकी रसोई की व्यवस्था कर देंगे भोजन की, किंतु कुछ था तो नहीं, यदि हम लोग आतिथ्य सत्कार इनका नहीं करेंगे तो ये जला करके भस्म कर देंगे ऋषि। इसलिए द्रौपदी के पास में गए, बोले जी प्रिय द्रौपदी तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, अब हम लोग तुम्हारे आश्रम में आए हैं, इनका स्वागत कैसे होगा, आप भोजन कैसे होगा, आप व्यवस्था करो जैसे रोज करती है सबके लिए। उन्होंने कहा जी आज मैं व्यवस्था क्या करूं, तो मैंने तो बटलो ही मांग बच करके उलाट दिया है। उसने कृष्ण को बुलाया, हे कृष्ण आप सब समय हमारी लाज रखते हैं, आज आपके हाथों में हमारी लाज है, नहीं तो हमारे पांचों पांडव लोग मारे जाएंगे, आप कोई व्यवस्था कीजिए। द्रौपदी ने पुकारा, वो कृष्ण कैसे रुक सकते थे, झट वहीं पर प्रकट हो गए, मुस्कुराते हैं। द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, दिन भर कुछ नहीं खाया, कुछ खिलाओ पहले तब बातचीत करेंगे। उन्हें जैसे इसी के लिए तो आपको बुलाया, हमारे पास में कुछ नहीं, मैं कृष्ण बोले जी मैं कुछ नहीं जानता, पहले हमको खिला करके संतुष्ट करो, इसके बाद में जो कुछ हम सुनेंगे। द्रौपदी ने कहा ये प्रभु दुर्वासा जी आए हैं 60,000 ऋषियों के सहित और हमने बटलो ही मार करके उल्टा रख दी है, अब आप कोई उपाय कीजिए, अभी स्नान करके विमल कुंड से अभी आ रहे होंगे। कृष्ण कहा जी बटलो ही लाओ तो, आ तो उसमें कुछ नहीं है। अरे लाओ तो सही, बार बार कहने से बटलोई ले आई। उन्होंने झांक करके ऐसे देखा, एक साग का तिनका साग लगा हुआ था और कुछ नहीं था। कहने कैसे द्रौपदी के आंखों से वो ओझल हो गया, नहीं दिखा, कृष्ण ने अपनी अंगुली के नख से उसको नीचे से निकाला और ऐसे करके पानी तो लाओ और एक लोटा पानी पी कर करके ढेकार दिया। ढेकार के साथ ही साथ में सारे विश्व का पेट भर गया और ऋषियों का पेट ऐसा भर गया जो ढेकारने लगे। अब दुर्वासा ने कहा अम्बरीश की बात याद है, ये हम अब उनसे भी बड़े भक्त के पल्ले पड़े हैं, न जाने इस बार क्या, अगर चक्र इस बार हमारी रक्षा नहीं करेगा, इसलिए एकदम आगे वहीं से एकदम भाग करके चले गए उड़ करके ऋषि लोक में, तपोलोक में जहां पर पलायन इत्यादि ऋषि हैं वहां पर भाग करके चले गए। किसी प्रकार से रक्षा हुई, तो ये घटना यहीं पर हुई। और भी एक घटना हुई, दुर्योधन ने देखा कि एक बात करनी चाहिए, पांडव लोग अभी वहां पर हैं और भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए अपनी सारी सेनाओं का को लेकर भीष्म पितामह इत्यादि सारे लोगों को लेकर के आया और लेकर के विमल कुंड के पास ही एक तरफ में पांडव लोग, दूसरी तरफ उसने अपना सैन्य का खेमा लगाया, खेमा माने तंबू, और वहां पर उत्सव होने लगा, खान पीन राग रंग राच नाच बाजे गाजे सब होने लग गए। और बहुत तंग करना चाहा और अपने सेना से सुसज्जित था। उस समय में इंद्र ने कहा अपने गंधर्वों को, क्या नाम था उनके सेनापति का, चित्रसेन, हाँ, उनको कहा जे देखो तो ये अर्जुन भीम पांडवों को युधिष्ठिर इत्यादि को अपमान करने के लिए यहां पर आया है, कहां ये भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करते हैं और उनको अपमानित करने के लिए ऐसा करा, जाओ उस बदमाश को बांध करके ले आओ। बस वो अपनी सेना को लेकर के और वहां पर उपस्थित हुए और घोर युद्ध हुआ। उसमें भीष्म कर्ण दुर्योधन इत्यादि सबको हरा करके सबके सामने और उनको पकड़ लिया दुर्योधन को और पकड़ करके आकाश मार्ग से उड़े। अब वो चिल्लाने लगा हाय हाय रक्षा करो, कोई रक्षा करने वाला नहीं। युधिष्ठिर महाराज पासी में उधर में थे, उन्होंने कहा जी भीम देखो तो ये रो रहा है, दुर्योधन हमारा भैया है ना, सुजोधन हमारा भैया है, हमारे उसमें लड़ाई है किंतु दूसरा कोई आक्रमण करेगा तो हम 105 भैया हैं, 100 वो और 5 भाई हैं, हम में कुछ थोड़ा सा विरोध नहीं समझता इसलिए करता है किंतु दूसरों के लिए तो हम 105 हैं, तुम जाओ रक्षा करो। मैंने कहा मैं नहीं जाता, आपका आदेश ये नहीं मानता, प्रभु जी आप अपना ये वचन अपने पास में रखिए। उन्होंने देखा जी अर्जुन तुम जा सकता है, प्रभु ये तो आदेश बहुत, हम लोगों को अपमान करने के लिए, हमको मारने के लिए, हमें विष देने के लिए, हमारे को अपमानित करने के लिए क्या नहीं दिन रात यही मंत्रणा करता रहता है, और मैं उसकी रक्षा करने जाऊं, मेरी आदेश तो पालन करो। उनके कहने से फिर अर्जुन गए और धनुष मार लिया और गंधर्वों को हराया। गंधर्वों ने देखो तो ये विचित्र दशा, हम कहां इसके शत्रु को पकड़ने के लिए मारने के लिए गए सजा देने के लिए और ये अर्जुन और भीम यही सब लड़ रहे हैं हमसे। उन्होंने गंधर्वों को मार करके हटा दिया और उनको छोड़ दिया, वो वहां से सिर नीचे और पैर ऊपर गिरने लगा और भी विपद हुई। पहले तो कोई रक्षा का उपाय था, जब गिरने लगा अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि एकदम सीढ़ियां बन गई और उनको धीरे से एकदम उठा दिया और उनको लेकर के युधिष्ठिर महाराज जी के पास ले गए। ऐसा बनाया जैसे उतरेंगे तो कहां उतरेंगे, युधिष्ठिर के पास में ही। बड़ा लज्जित हुआ, कहिए इस जीवन की अपेक्षा मर जाना हमारा अच्छा था और इसका बदला किसी दिन हम लेंगे, इस खून का बदला हम लेंगे। दोस्तों को रक्षा करना, सांप को रक्षा करना, बिच्छू को रक्षा करना माने क्या, वो काटेगा उसको प्यार से लेकर के अस्तिन में रखो, छाती में रखो ना प्यार से, सांप को तो सांप क्या करेगा, प्यार करेगा ना, ऐसे करेगा। ये दुर्योधन ऐसे ही। तो यहाँ पर फिर लाया इसको युधिष्ठिर महाराज ने उसका बंधन खोल करके उसे सुर्योधन कहा, आइए पधारिए, विराजमान होइए। खिलाया पिलाने के लिए चेष्टा की कि भीतर में आग की जल रही थी उसको। इसके बाद में तब फिर छोड़ दिया, वो चला गया। ये घटना भी यहीं पर हुई। इसी तरह से और भी घटनाएं हुई। यहाँ पर ये सब तो बतलाया। यहाँ पर एक जसोदा कुंड भी है। जसोदा कुंड माने जसोदा जी की पीहर, माने पिताजी का स्थान, कृष्ण के मामा का स्थान ये काम्यवन में है। ये विमल कुंड के पास में है। श्वेत रामेश्वर जब हम जाते हैं तो बीच में पड़ता है। यहाँ पर जसोदा जी जब थी यहीं पर रहती थी। विवाह के बाद में भी कृष्ण को लेकर के आती थी और कृष्ण उनके साथ में आते थे। ननिहाल माने मामा का घर, उसी जगह में श्वेत बांध रामेश्वर है। श्वेत बांध रामेश्वर मैंने क्या किसी समय गोपियों के समाज में कृष्ण वहां थे।